नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की। चार दशकों में पिछले वर्ष वामपंथी हिंसा में मृतकों की संख्या सबसे कम। सिक्किम में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने सहायता के लिए 45 करोड़ रुपए मंजूर किए। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार। हांगचाओ एशियाई खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण, 34 रजत और 39 कांस्य सहित कुल 95 पदक जीते। पुरुष हॉकी में भारत को स्वर्ण पदक मिला और एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के सामने 287 रन का लक्ष्य रखा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है और ये लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। आज नई दिल्ली में श्री शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों के सहयोग से 2022 देश में बड़ी सफलताएं मिली हैं। उन्होंने अगले दो वर्ष में वामपंथी उग्रवाद का पूरी तरह से सफाया करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री अमित शाह ने कहा कि 2019 से ऐसे क्षेत्रों में कमी आ रही है जहां उग्रवादी बचे हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 195 नए शिविर लगाए गए और 44 नए शिविर अभी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में ये समस्या वहां दोबारा उठ ना सके, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति के परिणाम स्वरूप 2022 में हिंसा और मौतों की संख्या में पिछले चार दशकों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने के लिए प्रभावित राज्यों को उनकी वित्तीय सहायता रोकने के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन के संयुक्त दल बनाकर प्रयास करना होगा। समाचार कक्ष से चंद्रिका जोशी।
निर्वाचन आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज सामान्य पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पर्यवेक्षकों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समन्वय के साथ काम करने को कहा। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पर्यवेक्षकों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, मतदाता सूची, आचार संहिता, खर्च और कानूनी प्रावधान जैसे चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दोनों गुटों के पार्टी के नाम और उनके चुनाव चिन्ह घड़ी संबंधी उनके दावों को आज सुना। इनमें से एक गुट के नेता शरद पवार और दूसरे का नेतृत्व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के सामने इस विवाद की ये पहली सुनवाई थी। सोमवार को दोनों पक्ष दोबारा निर्वाचन आयोग के सामने उपस्थित होंगे। दोनों दलों के बीच संकट तब पैदा हुआ था जब अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी और पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए निर्वाचन आयोग के समक्ष गए। केंद्र ने बाढ़ग्रस्त सिक्किम के लिए आपदा सहायता के रूप में 45 करोड़ रुपए जारी किए जाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नुकसान के आकलन के लिए एक दल भी गठित किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज पोक्यांग जिले में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने आपदा में मृतकों के परिजनों के 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को 2000 रुपए की तत्काल राहत देने की भी घोषणा की। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि राज्य में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। 142 लोग अब भी लापता हैं। उत्तरी सिक्किम में बर्फ से ढकी लोनाक झील के फटने के कारण 4 अक्टूबर को तीसा नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। उधर मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने सिक्किम में मौसम सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
आज जो लेटेस्ट है यही है कि हमारा जो सिक्किम एरिया है वो इलाका के लिए कोई हैवी रेनफॉल वार्निंग नहीं है, और मेनली हमारा जो हैवी रेनफॉल वार्निंग है वो मेघालय के लिए है जो रेड कलर है, और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न जो पूर्वोत्तर राज्य है उसके लिए हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। और हमारा जो कम दबाव का क्षेत्र था वो अभी धीरे धीरे बांग्लादेश में चला गया, और इसके प्रभाव में मेनली मेघालय में रेन हो रहा है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज मौद्रिक समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखा है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख है, हालांकि दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए खरीफ की बुआई में गिरावट और वैश्विक खाद्य तथा ऊर्जा कीमतों में अनिश्चय के कारण मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। बयान के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इससे जमीनी स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना को 2 साल की अवधि यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य भुगतान स्वीकार करने वाले उपकरणों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अगस्त तक योजना के अंतर्गत 2,66,00,000 से अधिक उपकरण लगाए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बसों के ढांचे के निर्माण के लिए मानकों को मंजूरी दे दी है। ये मानक मूल उपकरण निर्माताओं और बस ढांचा बिल्डरों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। श्री गडकरी ने कहा कि ये कदम भारत में बसों की गुणवत्ता में और सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसमें यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को न्याय संगत और बाधाएं सहने में सक्षम कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 12 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्श समूह जेंडर प्लेटफॉर्म पर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान कारोबारी प्रमुखों के साथ बातचीत की। इसका उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। बैठक में विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिकी सहित कई क्षेत्रों में व्यापार की मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही भारत संयुक्त अरब अमीरात समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते से उत्पन्न अवसरों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। इन वार्ताओं से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और अवसर बढ़ने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में बाल यौन शोषण सामग्री हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने 3 सोशल मीडिया मध्यस्थों को चेतावनी दी है कि नोटिस के अनुपालन में किसी भी तरह से देरी होने पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाएगी, जो उन्हें कानूनी दायित्व से बचाती है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी 91वीं वर्षगांठ मना रही है। इस अवसर पर समारोह से पहले आज प्रयागराज में वायुसेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। परेड केंद्रीय वायु कमान मुख्यालय बमरौली में आयोजित की गई और संगम क्षेत्र में आयुध डिपो किले के पास एयर शो का आयोजन किया गया। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वे 19वीं महिला होंगी। नरगिस अभी जेल में हैं और ईरान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक हैं। नरगिस मोहम्मदी को 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है और 5 बार दोषी ठहराया गया है। उन्हें 31 साल की जेल और 154 कोड़ों की सजा सुनाई जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। चीन में हांगचाओ एशियाई खेलों में भारत ने आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 95 हो गई है। ब्यौरा खेल डेस्क से।
अब की बार 100 पार का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारतीय खिलाड़ियों का धमाकेदार प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।
आई जस्ट कांट गेट ओवर दिस, व्हाट अ मोमेंट फॉर इंडियन हॉकी। द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन मेंस हॉकी इज जस्ट सो इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन, इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर हॉकी इन इंडिया एंड व्हाट दिस मेडल डज फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, फॉर यंग किड्स वॉचिंग एवरीवेयर।
तीरंदाजी में आज पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक मिला। फाइनल में अतनु दास, धीरज बोम्मा देवड़ा और तुषार प्रभाकर शेल्के की टीम को कोरिया से 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों की ब्रिज टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक मिला। तीरंदाजी में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक जीता। अंकिता भगत, भजन कौर और सिमरनजीत कौर की टीम ने वियतनाम की टीम को 6-2 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय को कांस्य पदक मिला। भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के आरोन चिया और शो वी की जोड़ी को शिकस्त दी। सिपक टाकरा में महिला टीम को कांस्य पदक मिला है। महिला कुश्ती में सोनम ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में भारत की किरण ने मंगोलिया के पहलवान को पटखनी देकर कांस्य पदक जीता। अमन ने जापान के पहलवान को हराकर भारत के लिए एक और कांस्य पदक जीता। क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। महिला कबड्डी में भारत ने नेपाल को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष कबड्डी के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत 22 स्वर्ण, 34 रजत और 39 कांस्य सहित कुल 95 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 287 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने 49 ओवर में 286 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 37वें ओवर में 8 विकेट पर 178 रन बना लिए थे। कल ही दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच मैच दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की। 4 दशकों में पिछले वर्ष वामपंथी हिंसा में मृतकों की संख्या सबसे कम। सिक्किम में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। केंद्र ने सहायता के लिए 45 करोड़ रुपए मंजूर किए। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार। हांगचाओ एशियाई खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण, 34 रजत और 39 कांस्य सहित कुल 95 पदक जीते। पुरुष हॉकी में भारत को स्वर्ण पदक मिला। और एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के सामने 287 रन का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।